यरमिया अध्याय 6। आइए हम यरमिया अध्याय 6 खोलें। यहां यरमिया यहूदा वासियों को आने वाले विनाश की चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का त्याग करके मूर्ति पूजा में लीन हो जाने के कारण यरूशलेम का नाश होगा। अध्याय 6 वास्तव में अध्याय 3 के पद 6 के आगे का संदेश है। यहां वो बिन्यामिन के वंशजों को चेतावनी दे रहा है। बिन्यामिन एक बहुत छोटा सा गोत्र था और बिन्यामिन के गोत्र के कुछ वंशज यरूशलेम में अब भी थे। वो उनसे कह रहा था कि वे यरूशलेम में से भाग जाएं। यरमिया अध्याय 6 पद 1। तेकोवा में नरसिंगा फूको। तेकोवा निर्जन क्षेत्र में बेतलहम के पार मृत सागर की ओर है। ये वो अंतिम सीमा है जिसके बाद नुकीली चट्टानें आरंभ हो जाती है, जहां जंगली बकरियों को छोड़ कोई और नहीं रहता है। भविष्यद्वक्ता आमोस इसी क्षेत्र का निवासी था। यरमिया अध्याय 6 पद 1। और बेत केरेम का झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। ये बाबुल द्वारा लाए जाने वाले विनाश की भविष्यवाणी है। वे उत्तर में आराम की ओर से होकर आएंगे। यरमिया अध्याय 6 पद 2 से लेकर 5 तक। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी को मैं नाश करने पर हूं। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे। सियोन की बेटी अर्थात यरूशलेम को यहां सुंदर और सुकुमारी कहा गया है। उस पर दोपहर से चलकर संध्या तक आक्रमण किया जाएगा। यरमिया अध्याय 6 पद 6। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बांधो। ये वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। पेड़ों को काटा जाएगा और दमदमा बांधा जाएगा कि शहर पना ढा दी जाए और नगर द्वार गिरा दिए जाए। यरमिया अध्याय 6 पद 7। जैसा कुएं में, परमेश्वर यहां यरूशलेम की अवस्था को देखकर उसका वर्णन कर रहा है और ये वर्णन बहुत ही विस्तृत है। यरमिया अध्याय 6 पद 7। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकाला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। जिस प्रकार कुएं से नया जल निकलता है, उसी प्रकार यरूशलेम से बुराई बिना रुके निकलती ही चली जाती है। यरमिया अध्याय 6 पद 7। इसमें उत्पात और उपद्रव की कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। परमेश्वर से विमुख हो जाने के कारण वहां अत्यधिक मारपीट और लूटपाट और उत्पात मचा हुआ था। जैसा हम देख चुके हैं कि यरमिया राष्ट्र के नाश होने की साक्षी होने के लिए बुलाया गया था, उसे राष्ट्र के अंतिम कष्टों को भी देखना था। उसे यहूदा का बाबुल के पैरों तले रौंदा जाना देखना था। वो उन्हें रोकने में असफल था। वो जो कर सकता था वो केवल इतना था कि उन्हें चेतावनी दे दे और फिर जो होता है उसे देखे। किसी राष्ट्र का अंत होते देखना एक दुख की बात होती है। यरमिया की भविष्यवाणी को पढ़ते समय हम उन लक्षणों को देखते हैं जो यहूदा के विनाश की गाथा गा रहे थे और जान लेते हैं कि उसका अंत निश्चित है। यरमिया की भविष्यवाणी हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि आज भी वे सब बातें हो रही है जो उस समय यरूशलेम और यहूदा में हो रही थी। यरमिया सड़कों पर हो रहे उत्पात, मानवीय शोषण, लूटपाट आदि का उल्लेख कर रहा है। हम आज इन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लूटमार बढ़ रही है, इन्हीं के कारण यहूदा का पतन हुआ था। यरमिया अध्याय 6:8-9। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसराइल के सब बचे हुए दाखलता की नाई ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाख तोड़ने वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा, उसके सारे फल तोड़ लिए जाएंगे और उसके बाद दाख के तोड़ने वालों की नाई वे उसे रौंद देंगे। जो कुछ बचा रहेगा उसे भी चुन लिया जाएगा। इस प्रकार इसराइल से लेकर यरूशलेम तक कुछ नहीं बचेगा। यरमिया अध्याय 6:10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचे सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। देखिए, भविष्यद्वक्ता की क्या स्थिति थी। वो किसी से कुछ कह नहीं पाता था, वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे परमेश्वर की वाणी को अब बिल्कुल नहीं सुनते थे। उन्होंने परमेश्वर से मन फिरा लिया था और परमेश्वर का वचन उनके लिए घृणा का कारण था, परमेश्वर का वचन उनके लिए खुशी का कारण नहीं था। यरमिया अध्याय 6:11। यरमिया घोषणा करता है, इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूं। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा, सबका नाश किया जाएगा, वृद्ध हो या शिशु। यरमिया अध्याय 6:12-13। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब औरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। इस देश की ऐसी दशा थी कि सबके सब लालची थे और छल से पूर्ण थे, याजक और भविष्यद्वक्ता भी छल से पूर्ण थे। यरमिया अध्याय 6:14। परमेश्वर ने कहा, वे शांति है शांति ऐसे कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। भविष्यद्वक्ता वरन सबका ही यही कहना था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, जबकि विनाश उनके सिर पर मंडरा रहा था। यरमिया अध्याय 6:15-16। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित नहीं हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। परमेश्वर उन्हें चुनौती दे रहा है। वो कह रहा था, कुछ पल शांत खड़े रहो, अपने जीवन को देखो, अपने चारों ओर की परिस्थिति को देखो, अपना और अपने जीवन का मूल्यांकन करो, मार्गों में खड़े होकर देखो, तुम्हारे संसार में क्या हो रहा है जरा देखो, जिस पीढ़ी में तुम हो उसका क्या हो रहा है जरा देखो। उसने कहा, प्राचीन काल के अच्छे मार्ग की खोज करो, यही धार्मिकता का मार्ग है, प्रभु के साथ साथ चलो, यही अच्छा मार्ग है जिसमें तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने से आता है। इसमें एक महान विश्राम है। प्राचीन मार्ग है, प्रभु को मेरा संपूर्ण समर्पण। जब आप अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित करते हैं, तब आपको सबसे पहले परम शांति और विश्राम का बोध होता है। सत्य तो यह है कि जब आप घर जाते हैं तो आपको ऐसी शांति का आभास होता है कि आप अपने पलंग पर लेटकर सोना ही नहीं चाहते हैं। कितना अच्छा लगता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। मैं अब परमेश्वर से दूर नहीं हूं, मैं अब परमेश्वर से संघर्ष नहीं करता, वरन कहता हूं, परमेश्वर मैं तेरा ही हूं और मैं केवल तेरे साथ ही चलना चाहता हूं और बस तेरे ही सेवा करना चाहता हूं प्रभु। बस वो मन भावन विश्राम जो आपके प्राणों को प्राप्त है, क्योंकि आपने अपना जीवन मसीह यीशु को कर दिया है। आपके जीवन का सर्वप्रथम बोध ये होता है कि आपको अत्यधिक परम चेतना का विश्राम प्राणों के लिए प्राप्त होता है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा देता है। मनुष्य अपनी लालसाओं में उलझकर कहता है, ओह नहीं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हम तो जितना हो सके उतना पाने के लिए निकले हैं। वे जीवन की उमंग, जीवन के उन्माद और भाग दौड़ में पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, यरमिया अध्याय 6 पद 17, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, परंतु उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं नरसिंगा फूंक रहा हूं, ये चेतावनी का नरसिंगा है, दंड आ रहा है, परंतु उनकी प्रतिक्रिया होती है, ओह छोड़ो। यरमिया अध्याय 6 पद 18 और 19, इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है, हे पृथ्वी सुन। ये बड़े दुख की बात है, यहां लोग परमेश्वर की बात ही नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो पृथ्वी से बातें कर रहा है। वो बड़े ही दुख का दिन होता है जब लोग परमेश्वर की बातों को ना सुने और उसे पृथ्वी से बातें करना पड़े। यरमिया अध्याय 6 पद 19 और 20, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शभा से आता है, तुम्हारी धार्मिक क्रियाकलापों का क्या तात्पर्य है। यरमिया अध्याय 6:20, और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है। तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 51:16-17 पद, क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म को ईश्वरीय संबंधों से जोड़ते हैं। परमेश्वर आपके साथ संबंध रखना चाहता है, एक जीवित संबंध। यदि संबंध ना हो तो वो आपके धार्मिक क्रियाकलाप की परवाह नहीं करता है। धार्मिक क्रियाकलाप केवल धार्मिक व्यवहार हेतु अर्थहीन होते हैं। अर्थपूर्ण होने के लिए धार्मिक क्रियाकलाप के पीछे जीवंत संबंध होना आवश्यक है। परमेश्वर इसलिए कहता है बलियों को भूल जाओ, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं उन्हें स्वीकार भी नहीं करूंगा। यरमिया अध्याय 6:21-26 तक। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभरे जाएंगे। वे धनुष और भर्ची धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर की नाई सशस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जचा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट, जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है। टाट बांधना विलाप का वस्त्र होता था। यरमिया अध्याय 6:26-27। वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्बट व गट ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। संदेश तो समाप्त हो गया, अब परमेश्वर यरमिया से व्यक्तिगत वार्तालाप करता है। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्बट व गट ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। यरमिया अध्याय 6:28-30 तक। वे सब बहुत ही हटी है, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है, वे निरा तांबा और लोहा ही है। धौकनी जल गई, शीशा आग में जल गया, ढलने वालों ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। परमेश्वर यरमिया को स्पष्ट कह रहा है कि उसकी सेवकाई सफल और फलवंत नहीं होगी। इसराइली प्रजा का पतन हो गया है, परंतु मैंने तुझे उनके मध्य स्तंभ का सा स्थापित किया है।